लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे रोगियों की प्रेरिताई हेतु प्रार्थना करते हैं। हमारी याचना है कि रोगियों को अंतमलन देने वाला संस्कार उनके लिए, उनके परिवारों के प्रिय लोगों के लिए तथा सबके लिए ईश्वर की शक्ति, करुणा और आशा का एक दृश्यमान संकेत बन जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत अपने मंगलवारीय कार्यक्रम में संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लाउदातो सी, मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो की चर्चा सुन रहे हैं। हमने लाउदातो सी के पांचवें अध्याय, दृष्टिकोण और कार्यवाही की दिशाएं की शुरुआत की है। इस अध्याय में संत पापा फ्रांसिस संवाद के उन प्रमुख मार्गों को रेखांकित करने का प्रयास करते हैं जो हमें वर्तमान के उस आत्मघाती भावर जाल जिनसे हम घिरे हुए हैं बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। हमने अपने पिछले प्रसारण के अंतिम भाग में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में पर्यावरण की चर्चा करते हुए कहा, हम समुद्र के प्रबंधन प्रणाली की भी चर्चा करें। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समझौते तो मौजूद हैं, लेकिन विखंडन और विनियमन, नियंत्रण और दंड के सख्त तंत्रों का अभाव इन प्रयासों को कमजोर कर देता है। आज हम अपशिष्ट पदार्थों से समुद्र में बढ़ते प्रदूषण को पाते हैं और हमारे लिए खुले समुद्रों की रक्षा विशेष चुनौती को उत्पन्न करती है। इस संदर्भ में हमें शासन प्रणालियों पर एक समझौते की जरूरत है जिससे वैश्विक भलाई का ध्यान रखा जा सके। श्रोताओ, हमारी वह मानसिकता जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग को बदलने हेतु मूलभूत रूप में निर्णय लेते हैं, वही विचार गरीबी के उन्मूलन में हमारे लक्ष्यों को भी हासिल करने में कारगर सिद्ध होते हैं। हमें इन दोनों समस्याओं, प्रदूषण को कम करना और गरीब देशों और प्रांतों का विकास, के निदान में और अधिक उत्तरदायी रूप से कार्य करने की जरूरत है। 21वीं सदी में अतीत से विरासत में मिले शासन प्रणालियों को बनाए रखना देश के राज्यों की शक्तियों को कमजोर करती दिखाई देती है, मुख्यतः इसलिए कि आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण राजनीति क्षेत्र में हावी हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए जरूरी होता है कि और अधिक मजबूत और प्रभावकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की जाए जिसके पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रीय सरकारों के बीच समझौते द्वारा निष्पक्ष रूप से हो सके जिससे उन्हें प्रतिबंधों को लगाने का अधिकार दिया जा सके। जैसे कि संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने कलिसिया की सामाजिक शिक्षा पर निरंतर इन बातों पर जोर दिया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का संचालन, संकट से प्रभावित आर्थिक स्थिति को पुनः स्थापित करना, वर्तमान परिस्थिति में किसी तरह के संकट को दूर करना और विश्व के बहुत असंतुलनों पर कार्य करना, समग्र और समयबद्ध निशस्त्रीकरण लाना, भोजन और शांति स्थापना, पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रवासन को नियंत्रित करना, क्योंकि इन सारी चीजों के लिए हमें आवश्यक रूप से एक अच्छी वैश्विक राजनीतिक अधिकार की जरूरत है। जैसे कि मेरे पूर्वाधिकारी धन्य संत पापा योहन 13वें इसकी ओर कुछ सालों पर हमारा ध्यान इंगित कराया है। हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति रणनीतियों को विकसित करने के कार्य में भी खास महत्व को देखते हैं जिससे हम सभी को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्याओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। संत पापा कहते हैं कि हम देशों के बीच केवल जीत और हार की स्थिति को नहीं देखते, बल्कि हम इस स्थिति को गरीब देशों के मध्य भी पाते हैं। अतः इस बात की जरूरत है कि अलग अलग उत्तरदायित्वों को पहचाना जाए। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के संबंध में हमारे सवाल को अब केवल देशों के बीच मतभेदों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है। इनके लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर नीतियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। श्रोताओं, मानवीय क्षमताओं के दुरुपयोग की वास्तविक संभावना को देखते हुए व्यक्तिगत राज्य अपने में अपनी अपनी सीमाओं के भीतर योजना, समन्वयन, निगरानी और प्रवर्तन की जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कैसे एक समाज अपने लिए भविष्य की योजना को तैयार करते हुए निरंतर तकनीकी नवीनताओं को विकसित कर सकता है, इस संबंध में निगरानी और समन्वय का एक आधिकारिक स्रोत कानून है, जो जन सामान्य की भलाई के लिए स्वीकार्य नियमों को लागू करता है। एक स्वस्थ, परिपक्व और संप्रभुत्व समाज को जिन बातों पर अपनी सीमाएं निर्धारित करने की जरूरत है, वे हैं दूरदर्शिता और सुरक्षा, नियामक मापदंडों, समय पर प्रवर्तन, भ्रष्टाचार का उन्मूलन, उत्पादन प्रक्रियाओं के अवांछनीय दुष्प्रभावों के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया और संभावित या अनिश्चित जोखिम शामिल होने से संबंधित हैं। व्यावसायिक गतिविधियों द्वारा होने वाले प्रदूषण को कम करने के संबंध में विधि शास्त्र विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन यह राजनीति और संस्थागत रचनाएं केवल खराब व्यवहार से बचने के लिए नहीं है, बल्कि सर्वोत्तम व्यवहार को बढ़ावा देने, नए समाधान खोजने हेतु रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और व्यक्तिगत या सामूहिक पहल को प्रोत्साहित करने के लिए भी मौजूद हैं। तात्कालिक परिणामों से जुड़ी राजनीति, जिसे लोगों के उपभोक्तावादी क्षेत्रों का समर्थन प्राप्त है, अल्पकालिक वृद्धि उत्पन्न करने को प्रेरित करता है। चुनावी हितों के जवाब में सरकारें ऐसे उपायों से जनता को नाराज करने से हिचकती हैं, जो उपभोग के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं या विदेशी निवेश के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। सत्ता की राजनीति सरकारों के समग्र एजेंडे में दूरदर्शी पर्यावरण परियोजनाओं को शामिल करने में देर करती हैं। इस भांति हम इस बात को भूल जाते हैं कि समय अपने में स्थान से बड़ा है। जहां हम स्थान में बने रहने हेतु शक्ति को धारण करने की अपेक्षा एक प्रक्रिया को वहन करना अपने में सदैव प्रभावकारी पाते हैं। सच्ची शासन कला तब होती है जब हम कठिन समय में उच्च सिद्धांतों को कायम रखते हैं और दीर्घकालीन सामान्य भलाई के बारे में सोचते हैं। राजनीतिक शक्तियों का राष्ट्र निर्माण के कार्य में इस कर्तव्य का निर्वहन करना अपने में आसान नहीं होता है। श्रोताओं, संत पापा इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हुए कहते हैं कि कुछ स्थानों में सहकारिता का विकास इसलिए किया जा रहा है जिससे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का दोहन किया जा सके, जिससे स्थानीय आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी तथा अधिशेष ऊर्जा की बिक्री भी संभव होगी। यह साधारण उदाहरण हमें यह प्रदर्शित करता है कि जबकि मौजूदा विश्व व्यवस्था अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में शक्तिहीन साबित हो रही है, स्थानीय व्यक्ति और समूह वास्तविक अंतर उत्पन्न कर रहे हैं। वे हमारे बीच में एक बड़ी जिम्मेदारी की भावना, एक पुख्ता सामुदायिकता की भावना, दूसरों की रक्षा करने सृजनात्मकता के भाव और भूमि के प्रति एक गहरे प्रेम को लागू करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही वे इस बात की चिंता करते हैं कि वे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए क्या छोड़ जाएंगे। ये सारे मूल्य अपने में मूल वासियों में कूट कूट कर भरी हुई हैं। चूंकि भ्रष्टाचार के कारण कानूनों का प्रवर्तन कभी कभी अपर्याप्त होता है, इसलिए निर्णायक राजनीतिक कार्रवाई करने हेतु जनता पर दबाव डालना पड़ता है। समाज को गैर सरकारी संगठनों और मध्यवर्ती समूहों के माध्यम से सरकारों पर अधिक कठोर नियमन, प्रतिक्रियाएं और नियंत्रण विकसित करने के लिए दबाव डालना चाहिए। जब तक नागरिक राजनीति सत्ता राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और नगर पालिका को नियंत्रित नहीं करती, तब तक पर्यावरण को होने वाले नुकसान को नियंत्रित करना असंभव होगा। स्थानीय कानून भी अधिक प्रभावी हो सकते हैं। यदि पड़ोसी समुदायों के बीच समान पर्यावरण नीतियों का समर्थन करने के लिए समझौते मौजूद हों। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लौदातो सी मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने जुलाई महीने के लिए प्रार्थना की प्रेरिताई में कैथोलिकों से आह्वान किया है कि वे रोगियों की प्रेरिताई हेतु प्रार्थना करें। रोगियों का अंतमलन संस्कार ईश्वर की शांति, करुणा और आशा का एक दृश्यमान संकेत बने। इसी के मद्देनजर संत पापा फ्रांसिस ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि बीमारों का अंतमलन संस्कार उन लोगों को जो इसे ग्रहण करते हैं और उनके प्रियजनों को प्रभु की शक्ति प्रदान करे, या सभी के लिए करुणा और आशा का एक दृश्यमान संकेत बन जाए। हैशटैग प्रार्थना मनोरथ। और वाटिकन के राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर ने सोमवार 1 जुलाई को फिलीपींस की अपनी 5 दिवसीय यात्रा शुरू की। वहां वे मनीला के प्रेरितिक राजदूतावास में संत पेत्रुस और संत पौलुस के पर्व दिवस को चिन्हित करते हुए संत पापा दिवस के वार्षिक समारोह में भाग लेंगे। फिलीपींस में उनकी यात्रा 5 जुलाई तक होगी। अपने प्रवास के दौरान महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर कई बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मंगलवार 2 जुलाई को वे फिलीपींस के राष्ट्रपति श्री फर्दिनंद आर मार्कोस जूनियर से औपचारिक मुलाकात करेंगे। उसके बाद विदेश मामलों के सचिव एनरिको मानालो के साथ बैठक करेंगे। 3 जुलाई को महाधर्माध्यक्ष फिलीपींस के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन CBCP की आम सभा में भाग लेने के लिए उत्तरी मिंदानाओ क्षेत्र में मलाईबले जाएंगे। अगले दिन वे मलाईबले में प्रभु के रूपांतरण मठ में धर्माध्यक्षों के साथ पवित्र मिसा समारोह में भाग लेंगे। अंत में शुक्रवार 5 जुलाई को महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर मनीला के विदेश सेवा संस्थान में विदेश मंत्रालय से संबंधित एक सम्मेलन में भाग लेंगे। उधर यूरोप में विशेष रूप से फ्रांस और स्विट्जरलैंड में खराब मौसम के कारण कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। स्विट्जरलैंड में तिचिनो कैंटोन में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से 3 लोगों की मौत हो गई और 1 लापता है। देश के पश्चिमी भाग में भी रोन नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ के कारण कई लोगों को वैलेस के कैंटोन में ले जाया गया। फ्रांस में औबे विभाग में खराब मौसम के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। कार में सवार 3 लोग हवा के तेज झोंकों से टूटे हुए एक पेड़ के गिरने से घायल हो गए। उत्तरी इटली में भी प्रतिकूल मौसम की स्थिति दर्ज की गई है। वाले दी ओस्ता क्षेत्र में बारिश से प्रभावित कांगने शहर भूस्खलन और नदियों में बाढ़ के कारण लंबे समय तक अलग थलग रहा। वहीं पीएमोंते में भी मुश्किल हालात हैं। उधर नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में संदिग्ध महिला आत्मघाती हमलावरों द्वारा किए गए सिलसिलेवार हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हो गए। कैमरून की सीमा पर स्थित गुओजा शहर में शनिवार 29 जून को हुए हमलों ने 3 अलग अलग स्थानों, एक शादी समारोह, एक अंतिम संस्कार और एक अस्पताल को प्रभावित किया। बोर्नो राज्य पुलिस के एक प्रवक्ता ने यह बात कही। 18 पीड़ितों में से कुछ गर्भवती महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जबकि 19 गंभीर रूप से घायल लोगों को क्षेत्रीय राजधानी मैदागुरी ले जाया गया। पहली घटना दोपहर की शुरुआती घंटों में हुई। एक शादी के दौरान एक महिला अपनी पीठ पर एक बच्चे को ले जा रही थी। कुछ ही समय बाद एक अंतिम संस्कार समारोह के दौरान दूसरा हमला हुआ। अधिकारियों के अनुसार तीसरा विस्फोट शहर के सामान्य अस्पताल के पास हुआ। हमलों का अभी तक दावा नहीं किया गया है, लेकिन कार्य प्रणाली को देखते हुए बोको हराम को संदेह किया जाता है, जो एक जिहादी समूह है जिसकी हिंसा से 15 वर्षों में 40,000 से अधिक लोग पीड़ित हुए हैं और लगभग 2 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के सहयोगियों को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि मरीन ले पेन की प्रवासी विरोधी नेशनल रैली पार्टी ने रविवार को फ्रांस के संसदीय चुनाव के पहले दौर में जीत हासिल की। मतदान में ऐतिहासिक रूप से उच्च मतदान हुआ। आधिकारिक परिणामों से पता चलता है कि मतदाताओं ने मरीन ले पेन की नेशनल रैली को एक मजबूत जीत दिलाई है, क्योंकि कई लोग इसके प्रवास विरोधी विचारों से सहमत हैं। नेशनल रैली पार्टी को लगभग 33% वोट मिले हैं। वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट करीब 28% मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। राष्ट्रपति मैक्रोन के टुगेदर गठबंधन करीब 20% मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अधिकारियों और पर्यवेक्षकों ने बताया कि मतदान करीब 68% रहा, जो पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक है। हालांकि विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यह संसदीय चुनावों का पहला दौर था और पार्टियां 7 जुलाई रविवार को अंतिम दूसरे दौर से पहले लेपेन की राष्ट्रीय रैली को रोकने के लिए सहयोग कर सकती हैं। यूरोपीय चुनावों में अपनी पार्टी को नुकसान होने के बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने समय से पहले चुनाव कराने का फैसला किया। उधर पवित्र भूमि में न्याय और शांति आयोग का कहना है कि गाजा में जो युद्ध चल रहा है वह न्याय संगत युद्ध नहीं है। गाजा पट्टी में चल रही हिंसा को उचित ठहराने के लिए इसे एक हथियार के रूप में तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। पवित्र भूमि के कैथोलिकों के रूप में, जो एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए संत पापा फ्रांसिस के दृष्टिकोण को साझा करते हैं, हम इस बात से नाराज हैं कि इजराइल और विदेशों में राजनीतिक अभिनेता गाजा में चल रहे युद्ध को बनाए रखने और वैध बनाने के लिए सिर्फ युद्ध सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं। पवित्र भूमि के न्याय और शांति आयोग द्वारा एक दस्तावेज में चेतावनी दी गई है। एक अभिव्यक्ति के अनुसार उपयोग का विरोध करने और उसका मुकाबला करने के लिए जारी किया गया वह है सिर्फ युद्ध कैथोलिक सिद्धांत में उपयोग किया जाता है। न्याय और शांति आयोग का दस्तावेज रेखांकित करता है, पवित्र भूमि में एक छोटा समुदाय होने के बावजूद हम कैथोलिक इस भूमि की पहचान का एक अभिन्न अंग हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें और हमारी धार्मिक परंपरा को इस हिंसा को उचित ठहराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हम जो गवाही दे रहे हैं वह युद्ध की नहीं, बल्कि परिवर्तनकारी प्रेम, स्वतंत्रता और समानता, न्याय और शांति, संवाद और सुलह की गवाही है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।